नमस्कार श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखी गई तीतुस के नाम पत्री का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, सुनते हैं ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन दिनों में हम सब तीतुस की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि पौलुस ने तीतुस से कहा कि क्रेते की कलीसिया में प्राचीनों को नियुक्त करें। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के इस अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित और सच्चे वचन का अध्ययन फिर से कर सकें। हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो इस समय आपके वचन को सुनने के लिए तैयार हैं अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि आपका वचन हर एक के जीवन में कार्य करने पाए। हमारी विनती है अपने उन भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं, निराश हैं, परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं। पिताजी, आप उन्हें अपनी शांति और चंगाई और छुटकारा दीजिए। जो पाप में जकड़े हुए हैं, पाप में जीवन जी रहे हैं, उन्हें आजाद कीजिए ताकि प्रत्येक जीवन आपको धन्य कहने पाए। इस समय इस वचन पर आशीष दीजिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम देख रहे हैं कि पौलुस तीतुस को क्रेते में छोड़ आया था कि वहां कलीसिया का संचालन करे। वहां उसे कलीसियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति करना था, उनका अभिषेक करना था। पदाधिकारियों को चुनते समय उसे कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा, पौलुस पत्र के द्वारा उसे लिख करके समझाता है। उनका अपना व्यक्तिगत जीवन कैसा हो, उनका विवाहित जीवन कैसा हो और उनका पारिवारिक जीवन कैसा हो, ये सारी बातें उन्हें बताता है। अब वह प्राचीनों के विषय में निर्देश देता है। तो आइए हम पढ़ें तीतुस की पत्री 1:8। लिखा हुआ है, पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो। यहां पर लिखा है कि ये योग्यताएं प्राचीनों में होना चाहिए। हम जानते हैं कि प्राचीन कौन है। आइए हम पढ़ें तीतुस 1:9। और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। कलीसिया के पदाधिकारियों को दो बातों में प्रवीण होना है। पहला, वचन की शिक्षा दे। दूसरा, झूठे शिक्षकों का मुंह बंद कर पाए। मेरे विचार में आवश्यक है कि कलीसिया के पदाधिकारियों को बाइबल शिक्षा प्राप्त होने चाहिए। दूसरे विश्व युद्ध में सैनिकों की आवश्यकता में सहायक सेना बनाई गई थी जिसमें पदाधिकारी भी थे। परंतु पहला तीमुथियुस की पत्री 5:22 में पौलुस ऐसी शीघ्रता में पदाधिकारी नियुक्त करने के लिए तीमुथियुस को मना करता है। एक मनुष्य जो आज प्रभु यीशु को ग्रहण करता है, कल अपनी गवाही देता है और आप उसे तीसरे दिन कलीसिया का पद प्रदान कर देते हैं, चौथे दिन उसे प्रचारक बनाते हैं और पांचवें दिन वह कलीसिया का पादरी बन जाता है। यह कलीसिया का दुर्भाग्य है। कलीसिया के पदाधिकारी को परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना आवश्यक है और उसका प्रसारण करना है। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि क्रेते वासियों का अपयस, पौलुस क्रेते वासियों के अपयस की चर्चा करता है, परंतु हमें स्मरण रखना है कि सब मनुष्य पापी हैं, हम सब भाई हैं, क्योंकि हम सब पापी हैं। परमेश्वर के भाईचारे में सब मनुष्य नहीं आते हैं, क्योंकि वह मसीह में विश्वास के द्वारा परमेश्वर के परिवार की सदस्यता पाने से होता है, जो नया जन्म कहलाता है। परंतु निसंदेह हम सब आदम के वंशज हैं और इस कारण हम सब आदम में मर गए हैं, क्योंकि सबने पाप किया है। पहला कुरिन्थियों के पत्री 5:22 में, परंतु क्रेते वासियों का विशेष करके नाम खराब था। हम तीतुस 1:10 में पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से। लिखा है बकवादी, अर्थात निरर्थक बातें करने वाले। आप भी ऐसे कुछ लोगों को जानते होंगे जो बहुत अधिक बात करते हैं। मैं एक बार किसी के साथ लगभग 300 किलोमीटर की यात्रा पर गया और मुझे जो करना था वह बस हाँ हाँ कहना था। वह एक पल भी चुप नहीं रहा। यदि उसके शब्द एकत्र किए जाएं तो वह एक बोरा भरकर निरर्थक शब्द होते। निरर्थक बातें करने वाले बहुत हैं। मेरे मित्रों, मन हल्का करने के लिए थोड़ी बहुत मनोरंजन की बातें करना बुरा नहीं है, परंतु पौलुस कहता है कि सदैव व्यर्थ की बातें करना उचित नहीं। इसलिए वह कहता है कि धोखा देने वाले, विशेष करके खतना करने वालों में से। यहां पर है विशेष करके वे जो उसकी शिक्षाओं का खंडन करते थे। तब हम पढ़ते हैं तीतुस 1:11 में, इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। लिखा है कि घर के घर बिगाड़ देते हैं। यह बहुत गंभीर बुराई थी। जहां परमेश्वर का वचन बोया जाएगा, वहां शैतान अवश्य ही आ जाएगा। वह बैरी है जो गेहूं में जंगली बीज डाल देगा। यह मेरा सच्चा अनुभव भी है। हमारा रेडियो कार्यक्रम एक स्थान पर असंख्य लोगों को मसीह की संगति में ला रहा था और वे मसीह के प्रेम में बढ़ रहे थे। जब मैं वहां गया तब मुझे बताया गया कि वहां हमारे कार्यक्रम के तुरंत बाद किसी धार्मिक पंथ का रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया और वहां किया जा रहा है। उनका प्रचारक मेरी बाइबल शिक्षाओं को सुधारने का प्रयास करता है। शैतान सदैव वहां होगा। इसी प्रकार क्रेते द्वीप में भी महान प्रचार कार्य किया जा रहा था, परंतु बैरी वहां अपने जंगली बीज भी डाल रहा था। तीतुस की पत्री 1:12 में हम पढ़ते हैं, उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्यद्वक्ता है, कहा है, क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट पशु और आलसी पेटू होते हैं। दुष्ट पशु अर्थात वे असभ्य और निर्दयी थे। आलसी पेटू अर्थात बैठे बैठे खाने वाले थे। यहां पौलुस सराहना की बातें नहीं कर रहा है, परंतु उस युग में रोमी संसार में उनका ऐसा ही नाम था। पौलुस उनके एक कवि एपिमेनिदेस का संदर्भ दे रहा है। वह सदियों पूर्व क्रेते में ही जन्मा था। एक और कवि ने उनके बारे में लिखा था, क्रेते जहां 100 नगर हैं, इनकार नहीं कर सकता कि वह झूठा है। पौलुस कहता है कि क्रेते वासी सदा झूठ बोलते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि सब के सब क्रेते वासी झूठे थे, परंतु उनके विषय आम धारणा थी कि वे सब झूठे हैं। मेरे मित्रों, क्रेते वासियों में परमेश्वर के अनुग्रह के काम देखना कि वह क्या कर सकता है और उसने क्या किया, बड़ा ही अद्भुत है। वे झूठे, दुष्ट पशु, आलसी पेटू परमेश्वर की ओर फिरे और उनके जीवन बदल गए। तीतुस 1:13 में लिखा है, यह गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाएं। पौलुस तीतुस से कहता है कि उसे क्रेते वासियों के साथ सख्त व्यवहार करना होगा। इसका कारण है कि उनकी पृष्ठभूमि और उनका स्वभाव अन्यों से बिल्कुल भिन्न था। तीतुस 1:14 में आगे हम पढ़ते हैं, और यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन न लगाएं जो सत्य से भटक जाते हैं। यहूदियों की कथा कहानियों पर मन न लगाएं। यहाँ पौलुस विधि विधान के बारे में नहीं कह रहा है। यहूदियों के धर्मशास्त्र में कुछ वास्तव में असंगत कहानियां थी। आगे कहता है कि मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन न लगाएं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने अपने धर्म गुरुओं को झिड़का था क्योंकि वे परमेश्वर की व्यवस्था में प्रथाओं को स्थान देते थे। पौलुस भी यही कह रहा है, विधि की बातें दो पक्षों में थी, व्यवस्था से उद्धार और व्यवस्था पालन। ऐसी शिक्षाएं बड़ी हानि करती हैं। हमारा उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से है और हमें उच्च स्तर पर जीने की बुलाहट है। 10 आज्ञाओं से भी ऊंचा जीवन। परमेश्वर ने एक राष्ट्र को 10 आज्ञाएं दी थी और मेरे विचार में आज संसार के नियम यही 10 आज्ञाएं होना चाहिए। परमेश्वर कहता है कि तू हत्या मत करना, तो वह सब जातियों के लिए है, संपूर्ण संसार के लिए है, परंतु जिनका अनुग्रह से उद्धार हुआ है उनका जीवन आचरण इससे भी ऊंचा होना है। तीतुस 1:15 में लिखा है, शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हैं। यह पद उनके लिए है जो कहते हैं कि हमारा उद्धार अनुग्रह से हुआ है, इसलिए हमें कर्मों से मुक्त निरंकुश जीवन जीने की स्वतंत्रता है। उद्धार पाकर हम पवित्र हो गए हैं और जैसा चाहें वैसा ही जीवन जी सकते हैं। आज भी कुछ पंथ पाप को पाप नहीं मानते हैं क्योंकि उनका मानना है शुद्ध मनुष्य के लिए सब शुद्ध है। पौलुस के कहने का अर्थ यह नहीं है, वह विधि और मांस खाने के विषय कह रहा है, क्योंकि कुछ धार्मिक पंथों में भोजन वस्तुओं के विषय में बहुत सी वस्तुएं वर्जित होती हैं। पौलुस कहता है शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं। दूसरे शब्दों में, आप मांस ना खाएं तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यदि आप सांप खाना चाहें तो आप खा सकते हैं, मैं नहीं खाता हूं, इससे अंतर नहीं पड़ता है। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं। परमेश्वर के साथ संबंधों को आपका भोजन प्रभावित नहीं करेगा, उससे आपका उद्धार नहीं है। परमेश्वर के साथ आपका संबंध सही नहीं है तो सब्जियां खाकर आप शुद्ध नहीं हो जाएंगे। प्रभु यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार 15:18-20 में स्पष्ट कहा है, मनुष्य में जो जाता है वह उसे अशुद्ध नहीं करता, परंतु जो बाहर निकलता है वह उसे अशुद्ध करता है। तीतुस की पत्री 1:16 में लिखा है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। आज अनेक विश्वासी अपने जीवन से परमेश्वर का इनकार करते हैं और कहते भी हैं कि हम परमेश्वर के कार्यों का इनकार नहीं करते। मेरे प्रियो, वे परमेश्वर के वचन का भी इनकार करते हैं। एक मनुष्य कलीसिया का पदाधिकारी था और सबसे बड़ी बाइबल लेकर के आता था, यहाँ तक कि उसे उठाकर चलते समय वह एक ओर झुक जाता था। सब उसे अति धर्मी मानते थे, परंतु बाहर वह बेईमान कहलाता था। वह उस बड़ी बाइबल को लेकर चलता था, परंतु उसमें विश्वास नहीं करता था। आप अपने जीवन से बाइबल का और परमेश्वर का इनकार कर सकते हैं। इसीलिए लिखा है कि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। मेरे मित्रों, अनुष्ठान और कर्मकांड मनुष्य के दुष्ट मन को नहीं बदल सकते। केवल परमेश्वर का वचन मनुष्य के मन को बदल सकता है। पौलुस और याकूब दोनों ही कहते हैं कि विश्वास कर्मों से प्रकट होता है। उद्धारक विश्वास भला जीवन प्रकट करता है। कॉल्विन ने कहा था, केवल विश्वास द्वारा उद्धार है, परंतु उद्धारक विश्वास अकेला नहीं है। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि अध्याय एक समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय दो से जारी रखेंगे, जिसका विषय है कलीसिया को परमेश्वर का वचन सिखाना और सुनाना है। जी हाँ, कलीसिया उचित शिक्षा दे। यदि कलीसिया उचित शिक्षा ना दे तो वह कलीसिया नहीं है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 42 पद में लिखा है, वे प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। यह आरंभिक कलीसिया की पहचान थी, प्रेरितों की शिक्षा, संगति, रोटी तोड़ना और प्रार्थना। आराधनालय कितना भी ऊंचा हो, घंटे कितने भी ऊंचाई पर टंगे हो और मधुर क्यों ना बजते हो, परंतु प्रचार मंच से प्रसारित वचन बताएगा कि कलीसिया वास्तव में कलीसिया है, सुव्यवस्थित जैसा पौलुस कहता है और परमेश्वर का वचन घोषित करता है। पहले अध्याय में हमने देखा है कि जिन प्राचीनों का अभिषेक तीतुस को करना था, उन्हें 2 काम करने के योग्य होना था, उपदेश देने और झूठे शिक्षकों का मुंह बंद करने के योग्य होना था। आप अपनी संपूर्ण सेवा में केवल सबका मुंह बंद करें, यह महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ लोगों की सेवा नकारात्मक होती है, वे सदैव सुसमाचार विरोधियों पर वार करते हैं। यह आवश्यक है, परंतु हमारी सेवा संतुलित होना चाहिए। हमें दोनों काम करना है, परमेश्वर के वचन की शिक्षा देना और झूठी शिक्षाओं का खंडन करना है। इस अध्याय में अर्थात अध्याय 2 में पौलुस परमेश्वर के वचन की शिक्षा पर बल देगा। आइए हम पढ़ें तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य हैं। लिखा है खरे उपदेश, अर्थात प्रेरितों की शिक्षा आरंभिक कलीसिया के लिए सबसे पहली महत्वपूर्ण बात थी, प्रेरितों की शिक्षा। इस पत्र में हम जो पढ़ते हैं वह भी तो प्रेरितों की शिक्षा ही है। मेरे प्रियो, सबसे पहले पौलुस का संदेश वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए। आइए हम पढ़ें तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसके 2 पद में, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। उनका विश्वास प्रेम और धीरज पक्का हो। उन्हें सचेत होना है, अर्थात अत्यधिक चौकस एवं गंभीर रहना है। वे आदर के योग्य हों और संयमी हों। तीतुस की पत्री 2 अध्याय के 3 पद में लिखा है, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हों। लिखा है पवित्र लोगों सा। वृद्ध महिलाएं स्वभाव से श्रद्धालु हों, दोष लगाने वाली, अफवाह फैलाने वाली ना हो, पियक्कड़ अर्थात शराबी, शराब पीने वाली ना हो, अच्छी बातें सिखाने वाली हों, वे युवा स्त्रियों को शिक्षा दें और आदर का मार्ग सिखाएं। तीतुस 2 उसके 4 और 5 पद में लिखा है, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हों, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। लिखा है कि घर का कारोबार करने वाली, यहाँ मैं परेशानी में पड़ सकता हूँ, परंतु यह कहना आवश्यक है कि स्त्री का प्रथम उत्तरदायित्व उसका परिवार है। पत्नी होना और बच्चों को संभालना एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। परिवार खेलने का स्थान नहीं है, यह काम आसान ना समझा जाए। मेरे प्रियो, मुझे पूरा विश्वास है कि पौलुस महिला मुक्ति का समर्थन कभी नहीं करता। मेरे अपने विचार में यह उचित नहीं है। मेरा मानना है कि कोई भी स्त्री नहीं चाहेगी कि उसके साथ पुरुष का सा व्यवहार किया जाए। मैं एक बार किसी बड़े निकाय में गया हुआ था, वहां 50 महिलाएं काम कर रही थी और मुझे बताया गया कि वे महिला मुक्ति को बढ़ावा दे रही हैं। मैं मानता हूं कि स्त्रियों को उनकी योग्यता के आधार पर पदोन्नति और वेतन मिलना चाहिए। मैंने देखा कि ये स्त्रियां अपना भला पहले चाहती थी। यदि वे पुरुषों की बराबरी करना चाहती हैं तो खड्डा खोदने का काम भी उन्हें करना चाहिए, परंतु मुझे विश्वास है कि वे ऐसा करना नहीं चाहेंगे। मेरे मित्रों, संसार में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण काम है परिवार बनाना, भली अर्थात दयालु बनना, पति के अधीन रहने वाली अर्थात पति को प्रतिक्रिया दिखाने वाली। रोमियों की पत्री 8 अध्याय उसके 7 पद में पौलुस कहता है, शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। पौलुस के कहने का अर्थ है कि मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान सकता और न ही उसके प्रति प्रतिक्रिया दिखा सकता है। पत्नी को पति के प्रति प्रतिक्रिया दिखाना है, वह आगे चलने वाला है और पत्नी को उसके सहयोग में व्यवहार करना है। एक हृष्टपुष्ट लंबा चौड़ा पुरुष आकर मुझसे कहने लगा, क्या आप मेरी पत्नी को परामर्श देकर मेरे अधीन रहना सिखा सकते हैं? मैंने कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। उसने कहा, क्यों? मैंने पूछा, आपने पिछली बार उससे कब कहा था कि आप उससे प्रेम करते हैं? उसे याद नहीं था। आपके कहने का अर्थ क्या है? उसने पूछा, मैंने कहा, सब कुछ ही इससे संबंधित है। यदि आप उससे यह न कहें कि आप उससे प्रेम करते हैं, तो वह आपको प्रतिक्रिया कैसे दिखाएगी? आरंभ में तो आपने उससे कहा होगा कि आप उससे बहुत प्रेम करते हैं। यदि आप उसे यह बोध करवाते रहेंगे कि आप उससे प्रेम करते हैं, तो वह भी आपको प्रतिक्रिया दिखाती रहेगी। पत्नी के लिए आवश्यक है कि वह अपने पति के प्रेम के प्रति प्रतिक्रिया दिखाए। मेरे प्रियो, आज कई ऐसे परिवार हैं जहां पर पति पत्नी के बीच में समस्या है, क्योंकि पत्नी पति के प्रेम के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को नहीं दिखाती है और ऐसा ही पति भी कई बार पत्नी के प्रेम को प्रतिक्रिया के रूप में नहीं दर्शाता है और यही कारण है कि परिवार में समस्याएं आती हैं। यहां पर हमें बताया गया है कि हम कलीसिया में किस प्रकार अपने प्रतिक्रिया को दिखाएं और एक उत्तरदायित्व के साथ अपने परिवार को चलाएं। मेरे प्रियो, आइए आज इस वचन के द्वारा से अपने जीवन को जांचें और उसके अनुसार हम चलने का यत्न करें। यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। प्रभु आज के इस अध्ययन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है, प्यारे प्रभु तू मेरे जीवन का सहारा है। संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है, प्यारे प्रभु तू मेरे जीवन का सहारा है। जब मैं भटक गया मन को तूने सहारा दिया, तुझसे जब मैं भटक गया, जीवन को तूने सहारा।